ओम शांति। हम सब ने इन तीन दिनों में स्वयं को जाना है, परमात्मा को जाना है। भगवान को मानते तो हम सब थे पर जानते नहीं थे, तो भगवान ने आकर स्वयं हमको अपनी पहचान दी है। और कल विशेष रूप से राजयोग क्या है ये हमें पता चला। भगवान ने कहा है, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, बस इतना ही हमको करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। क्योंकि याद तो तभी आएगी भगवान की या किसी की भी जिसके साथ संबंध होगा, संबंध के साथ प्राप्तियां होंगी। कल इतना ही जाना था हमने, तो सारा दिन कुछ चिंतन चला, भगवान से मेरा क्या संबंध है, भगवान से मुझे क्या प्राप्तियां हैं। सारे संसार में हम भटकते रहे हैं प्राप्तियों के लिए, मुझे सुख चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्यार चाहिए। कभी किसी से मांगा, कभी किसी से मांगा, कभी जंगलों में ढूंढा, कभी चीजों में ढूंढा, लेकिन मिला नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि जिस रानी के गले में हार पड़ा हो वो चारों ओर ढूंढे तो मिलेगा क्या? नहीं मिल सकता। तो ये शिव बाबा ने ही आकर हमें बताया कि मैं आत्मा हूं ही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप। तो जब मुझे पता चला कि मैं हूं कौन, तब हम इन गुणों को रियलाइज कर पाएंगे। तो ये जो प्राप्तियां, ये प्राप्तियां कराने वाला वो भगवान है, क्योंकि वो सागर है। और भगवान कहने से बहुत दूर कर दिया, खुद को दास कहा, दासों का भी दास कहा, कितने दूर हो गए। लेकिन अगर वो मेरा बाप है, अगर वो मेरा बच्चा है, अगर वो मेरा साजन है, अगर वो मेरा दोस्त है, तो उसके ऊपर अधिकार होता है। फिर जो उसका होता है वो मेरा होता है ना ऐसा। तो इन संबंधों के आधार पर ही हमारी प्राप्तियां होती है। हम कैसे किसी के साथ में कितना अच्छा रिलेशन निभाते हैं। लक्ष्मी दीदी ने जब पहले दिन का आत्मा का लेसन लिया था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा फॉर्मूला बताया था, स्ट्रेस क्या चीज होती है। स्ट्रेस माना जो बाहर के सरकमस्टांसेस हैं, उनको हम किस प्रकार से पार पाते हैं वो है, वो बताएगा कि कितना स्ट्रेस है। आउटर सरकमस्टेंसेस, प्रॉब्लम्स, फोर्स, प्रेशर्स, उनको डिवाइड किया इनर पावर से। तो अगर हमें अपने स्ट्रेस को कम करना है, निगेट करना है, तो बाहर की परिस्थितियों को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, हम अपनी आंतरिक शक्ति को ही बढ़ा सकते हैं। तो ये आंतरिक शक्तियां जो हमारी खो गई हैं, धूमिल हो गई हैं, कम हो गई हैं, इनको कैसे बढ़ाएं? अब दिक्कत क्या है, आंतरिक शक्तियों की ओर तो ध्यान हम देते ही नहीं है। हमारे लिए शक्ति माना क्या? हमारे लिए शक्ति माना क्या? कोई बाहुबल को समझता है ना? जिम जाते हैं, शक्ति को कहां ढूंढते हैं? जिम में ढूंढते हैं, या हथियारों में ढूंढते हैं, न्यूक्लियर पावर में ढूंढते हैं, ये हमारे लिए शक्ति है। या नॉलेज इज माइट कहा जाता है, सारा दिन इंटरनेट पे लगे हुए हैं, न्यूज में लगे हुए हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी। अब उन्हें ये नहीं मालूम कि जो हम ले रहे हैं कंप्यूटर से वो इंफॉर्मेशन है। अब वो इंफॉर्मेशन कितनी नॉलेज बनी? अच्छा, नॉलेज भी बन गई मान लो, तो क्या वो नॉलेज विजडम बनी है? जो ज्ञान धारणा में ही नहीं आया, उस ज्ञान का कोई फायदा है क्या? हा? तो नॉलेज को हमने माइट माना, कहां हमने साइंस को पावर माना है? साइंस में भी बल है, लेकिन साइंस जहां हमें एक और सुख दे रही है, वही विनाश का कारण भी बन रही है। बत्ती पंखा चल रहा है बहुत अच्छा है, और उसी से शॉर्ट सर्किट हो जाए, आग लग जाए, एक सेकंड का काम है। तो ये जो भी शक्तियां हैं, ये सारी विनाशी शक्तियां हैं। जिसके पास जितना पैसा उसको उतना बड़ा उतना ताकतवर समझ लेते हैं। तो हमें पैसा चाहिए क्योंकि धन में शक्ति है। कभी हम ये समझते हैं कि पॉलिटिकल राज्य सत्ता उसमें पावर है, और कभी हम समझते हैं कि धर्म में शक्ति है। और धर्म की शक्ति ने आज कितना खून बहाया है, कितनी लड़ाइयां छेड़ दी हैं, ये हम सब देख रहे हैं। तो जिन्हों को हमने शक्तियां माना, ये सारी शक्तियां थोड़े समय के लिए हैं, विनाशी हैं, और ये हमें चिर सुख प्रदान करने वाली नहीं है। इस बात से सभी इत्तेफाक रखते हैं, अग्री करते हैं इस बात से। हाँ, ये शक्तियां, और इन्हीं शक्तियों के पीछे हम घूम रहे थे, इतनी सारी शक्ति जमा कर ली, साइंस भी इतनी एडवांस हो गई है, आज लोगों के पास पैसा भी बहुत है, बहुत सारे कंफर्ट्स हैं, पॉलिटिकली भी बड़े साउंड हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या मन का सुकून है? हाँ, टाटा बिरला अंबानी धन का बहुत है उनके पास बल, लेकिन धन के बल से सुख है क्या? क्या साइंस से सुख है मिला हमें? क्या बाहुबल में दारा सिंह को कभी कोई मुश्किल नहीं आई, कोई दुख नहीं हुआ, शांति है? हाँ, जा रहे हैं जिम 24 साल 25 साल 30 साल में हार्ट अटैक हो गया, तो दुख भी बढ़ रहे हैं। हम इन बलों को जमा तो कर रहे हैं, इन शक्तियों को इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन साथ में दुख भी बढ़ते ही जा रहे हैं। तो आखिर कारण क्या है? तो दो विशेष कारण आपको बताऊं। महाभारत में एक प्रसंग आता है जिसमें युधिष्ठिर के को कहते हैं दुर्योधन कि आप भले धर्मराज हैं, लेकिन ऐसा मत समझिए कि केवल आप ही को पता है कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है। मैं भी जानता हूं, पर धर्म को जानते हुए भी धर्म पर चल नहीं सकता। आज हमें पता नहीं है क्या कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, मुझे कैसा व्यवहार करना, किसको नहीं पता कि गुस्सा करने से अपना नुकसान होता है? पता है कि नहीं पता? पता है, पर फिर भी करते हैं गुस्सा। हरेक को पता है लालच करेंगे तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो फंसेंगे। रोज फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं कि नहीं, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट कौन हो सकता है? जिसके पास पैसा हो वो नहीं। डिजिटल अरेस्ट वो हो सकता है जिसने कभी ना कभी कोई इस प्रकार का काम किया है जिसका पकड़े जाने का, खोले जाने का उसके मन में भय है, तब वो डिजिटल अरेस्ट हो सकता है, वरना आकर के कोई देखे, कोई नहीं कर सकता, है ना? तो हम जानते हैं राइट क्या है रॉन्ग क्या है, लेकिन जानते हुए भी राइट पर चल नहीं सकते। उसका कारण आंतरिक शक्ति की कमी है। मेरे पास आत्मा में, मुझ आत्मा के अंदर ही ताकत नहीं है कि मैं अपने बुद्धि विवेक से कार्य ले सकूं। दूसरी चीज क्या है कि हमें पता है कि वेल्थ और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, तो वो खत्म हो गया ना। मुझ आत्मा के मूल्य कहीं खो गए हैं, इसीलिए आज ये दुख का कारण बने हुए। इसको अगर हम थोड़ा और खोल करके देखें तो जब हम इस संसार में पहले पहले उतरे थे परम धाम से, हम आत्माएं, तो हम एकदम प्योर थी, पावरफुल थी, पीसफुल थी, लवफुल, हर चीज में हर गुण में हम फुल थे। और जब इस संसार में आए तो ये संसार भी बहुत अच्छा था क्योंकि हम अच्छे थे ना, तो आत्मा का प्रभाव प्रकृति पर पड़ा। लेकिन जब हम जन्म मरण की साइकिल में आते चले गए, कर्मों में आते चले गए, तो धीरे धीरे मुझ आत्मा के जो बैटरी फुल थी, फुल चार्ज थी, वो यूज होते होते कम हो गई। हमारी प्योरिटी घट गई, पीस घट गई, खुशी घट गई, प्यार घट गया, हाँ, हमारा ज्ञान खत्म होने लगा, विवेक खत्म होने लगा, तो पावर कम होती चली गई। और फिर एक ऐसा भी समय आया कि जब हम आत्म अभिमानी से, जब हमने सतयुग त्रेता में जीवन व्यतीत किया, हम खुद को आत्मा समझते थे और आत्मा के नाते से एक दूसरे के संबंध में, संपर्क में, व्यवहार में आते थे, लेकिन जब द्वापर में आए तो हम बॉडी कॉन्शियसनेस में आ गए, हम भूल ही गए कि हम आत्मा हैं। तो जब हम भूल गए कि हम आत्मा हैं और हमने खुद को बॉडी समझ लिया, तो फिर बॉडी की चीजें ही हमारे लिए पावर हो गई ना। और बॉडी विनाशी है, तो बॉडी से संबंधित जितनी भी चीजें होंगी, चाहे पावर ही क्यों ना हो, वो विनाशी हो जाती है। तो आज हमें बाह्य ताकतों की आवश्यकता नहीं है, आज हमें आंतरिक शक्ति को जगाने की आवश्यकता है। अब इस आंतरिक शक्ति को हम कोई भी नाम दे सकते हैं, विल पावर कह सकते हैं, विल पावर कहो, डिटर्मिनेशन कहो, करज कहो, कहते हैं ना आत्मबल, विल पावर माना आत्मबल। एक बुढ़िया सालों से बेड रिडन है, उठ नहीं सकती चारपाई से, और अगर घर में आग लग जाए, घर वाले तो छोड़ छाड़ के भाग जाएंगे, पहले अपनी जान बचाएंगे। अब उसके पास तो एक ही चीज है, डू और डाई सिचुएशन। हाँ, 4 फीट की दीवार फांस जाएगी, कैसे? शक्ति थी, उठने की तो शक्ति थी नहीं, पर 4 फीट की दीवार फांस गई, क्यों? क्योंकि जान पर बनाई है ना। तो वो है विल पावर, कहां से आया? एक सोल्जर जो है, जब सीमा पर खड़ा होकर लड़ाई कर रहा होता है, तो हाथ कट जाए, पैर कट जाए, गोली लग जाए, लड़ता रहता है कि मैं मार के मरूंगा। और वही सोल्जर जब घर में आता है छुट्टियां मनाने के लिए और सेब काटते हुए उंगली कट जाए तो बड़ा दर्द होता है। वही आदमी है, सिचुएशन में जमीन और आसमान का अंतर है, लेकिन एक जगह दर्द हो रहा है और एक जगह दर्द नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सोच वैसी है, वो ठान के गया है मुझे मरना है और मारना है बस। और एक जगह मैं तो छुट्टियों में आया हूं ना, तो मुझे कोई भी दिक्कत किसी भी प्रकार की क्यों आनी चाहिए? तो माइंड सेट ये है। हाँ, इसको हम मेंटल पावर भी कहते हैं। हमने प्रार्थनाओं में क्या कहा? इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हमको मन की शक्ति देना, हमने कभी प्रार्थना में कहा हमको धन की शक्ति देना, हमको तन की शक्ति देना? कहा हमको जन की शक्ति देना, हमको मन की शक्ति देना। तो मन की शक्ति अगर होगी तो बड़े से बड़े कार्य कर सकेंगे। इंग्लिश फेबल्स में कहानी आती है डेविड और गोलियत की। उसमें बताते हैं कि एक राक्षस, गोलियत राक्षसी था, बड़ा सा भीमकाय था, तो वो आकर के रोज एक बच्चे को उठा ले जाता था, खाता था गांव में। अब बहुत परेशानी हुई तो छोटा सा एक बच्चा डेविड, उसने कहा तुम चिंता नहीं करो, मैं जाऊंगा उसके पास। अरे वो इतना बड़ा है, मैं मार दूंगा उसको। कहते तुम कैसे मारोगे, तुम इतने छोटे से, वो इतना बड़ा। ही इज टू बिग फॉर यू, ही इज टू बिग टू हिट। डेविड कहता है नो, ही इज टू बिग टू मिस। पॉइंट पे करना मुश्किल है ना, इतना बड़ा है कहीं भी मारूंगा लगेगा तो है ही उसको। तो ये है मनोबल, इसको हम स्पिरिचुअल पावर भी उस प्रकार से कह सकते हैं, क्योंकि ये पावर जो है सोल की पावर है। सोल के एट्रीब्यूट्स हैं माइंड, इंटेलेक्ट और संस्कार, है ना। तो मन की पावर अगर हम कह रहे हैं या बुद्धि को दिव्य बनाने की बात कर रहे हैं, तो आखिर हम बात तो सोल की कर रहे हैं ना। हाँ, और इसी को इनर पावर्स कहते हैं। ये इनर पावर्स किस प्रकार से हम राजयोग के अभ्यास से अपने अंदर पुनर्जागृत कर सकते हैं, इमर्ज कर सकते हैं? पावर्स हमारे अंदर हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन शिव बाबा ने हमको स्मृति दिलाई है तुम आत्मा हो, तुम्हारे अंदर असीम शक्तियां हैं, क्योंकि तुम सर्वशक्तिवान की संतान हो। हनुमान को याद दिला दिया तुम कौन हो, महावीर हो, तो एक छलांग में समंदर पार हो गया, है ना। तो भगवान ने भी हमें केवल याद दिलाया है। एक प्रतियोगिता एक राज्य में रखी गई, राजा ने कहा कि बहुत लोहे का एक रखा हुआ था कि उसको तुम एक हाथ से मार करके इसको तोड़ देना है। अब कैसे करेंगे, बड़े बड़े लोगों ने ट्राई किया, नहीं कर पाए। फिर एक दुबला पतला राजपूत आया, मैं करूंगा लेकिन मैं अपने साथ एक आदमी को और लाऊंगा। कहते नहीं, तुम ला नहीं सकते। कहते नहीं, वो कुछ करेगा नहीं, वो खड़ा होकर के कुछ बोलेगा और कुछ नहीं करना। कहते ठीक है। अब लेकर के आया तो उसने जो अपने साथी को जो लाया था, साथी ने कुछ नहीं, जैसे कवि चंद्र बरदई थे ना, बस शौर्य की गाथा गाना शुरू किया। तुम ये हो, तुम वो हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो, महाराणा प्रताप के वंशज हो, हाँ बस। और वो धीरे धीरे सुनते 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 जो वैलर उसके अंदर जगा, एक हाथ से तोड़ा बस फटाफट। तो ये स्मृति है, ये उमंग है, ये उत्साह है। किसी को हिम्मत दे देना, हिम्मत तो मन से दी जाती है ना, हाँ, किसी को हिम्मत दे देना, किसी को आशा दे देना, ये कितनी बड़ी सेवा हो सकती है। तो भगवान ने आके कुछ नहीं किया, केवल स्मृति दिलाई है। मैं क्या तुम्हारे दुख दूर करूंगा, तुम चाहो तुम अपने सारे दुख दूर कर सकते हो, और अपने ही क्यों, तुम सबके दुख दूर कर सकते हो। इच्छा शक्ति कहा गया है, इच्छा की शक्ति है तो क्या नहीं कर सकते हैं। तो अब इन इनर पावर्स को हम राजयोग के जरिए कैसे प्राप्त करते हैं। फर्स्ट थिंग, सोल कॉन्शियसनेस। मैं बॉडी हूं तो लिमिटेड हूं, और मैं सोल हूं तो मैं अनलिमिटेड हो जाती हूं। क्यों? क्योंकि उस अनलिमिटेड शिव बाबा की, परमात्मा की संतान हूं। जो उसके पास है वो सब कुछ मेरे पास है। राजकुमार को बताना थोड़े ही पड़ता है, हाँ, उसे मालूम है ना, जो राजा के पास खजाना है वो सारा खजाना मेरे पास भी है, वो सारी सेना मेरी सेना है। ऐसा नहीं राजा की सेना अलग है और राजकुमार की सेना अलग है। तो ये जो सोल कॉन्शियसनेस है, मैं हूं कौन, सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं शक्ति स्वरूप हूं, मैं महावीर आत्मा हूं, मैं चाहूं तो स्वयं को परिवर्तन कर लूं, मैं चाहूं तो जग को परिवर्तन कर लूं, मेरे अंदर बहुत पावर है। और दूसरा है सुप्रीम कॉन्शियस। अगर मेरे मन में कोई कमजोरी के संकल्प आ भी रहे हैं, आ ही जाते हैं कभी, सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, कैसे करूं, क्या करूं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा साथी कौन है? भगवान तो मेरा साथी है ना, मेरे लिए ही तो आया है ना इस दुनिया में, किसी दूसरे के लिए आया है? मेरे लिए आया है, मेरी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए आया है, मुझ आत्मा को शांति, शक्ति, प्रेम, सुखानंद से भरपूर करने के लिए आया है। तो शिव बाबा वो मेरे साथ है। तीसरी चीज जो हमें संबल देती है वो है ड्रामा। कभी जब हमें हताशा की फीलिंग आती है, जब सर्कमस्टांसेस ज्यादा बड़े लगते हैं, जब ये लगता है कि ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया है, तब शिव बाबा ने बताया हुआ है कि ये जो संसार है, ये नाटक है, हर एक को एक रोल मिला हुआ है ना। मान लो सामने वाला रावण है ठीक। अब ये तो मेरे ऊपर है ना कि मुझे राम बनना है, कि विभीषण बनना है, कि मुझे शूर्पनखा बनना है, कि सीता बनना, ये मेरे ऊपर है, मुझे क्या बनना है। आप लोगों ने बचपन में रामायण देखा तो अरविंद नाम था ना जिन्होंने रावण का वो किया था, किरदार निभाया था, अरविंद, अरुण गोयल ने राम का किया था, अरविंद त्रिपाठी या त्रिवेदी, बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। तो अरुण गोविल जी ने एक बार अपने इंटरव्यू में कहा था, मुझे टेंशन हो गई थी कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उस रावण के सामने खड़े होने के लिए। तो ये मेरे ऊपर है, हर रोज मैं एक नया डायलॉग लिख रही हूँ, है ना, हर रोज एक एक्टिंग हो रही है, हर सीन में मेरी अपनी ही ये एक्टिंग है, मुझे कैसा परफॉर्म करना है ये तो मेरे हाथ में, सामने वाला तो जैसा है वो तो है ही वैसा, राइट। और दूसरी एक चीज ये आती है कि ये जो ड्रामा है, जो कर्म का हमको ज्ञान भगवान ने दिया है, भले आज हमें लग रहा है कि हमने कुछ गलत नहीं किया था तो ये व्यक्ति मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, जब कोई सीरियल वाइंड अप होता है ना, आखिरी सीन, आखिरी डे जो आखिरी एपिसोड होता है, अगर किसी ने फॉलो किया है उस सीरियल को तो वो सब जानता है, लेकिन अगर कोई नया आकर के देखे उसको तो कहते हैं कि ये तो इतना अच्छा है, इसको क्यों हथकड़ी लग रही है, और ये इतना बुरा है और उसको लोग ऐसे पीठ तप रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि वो ऐसा हो गया, ये क्या है। तो जो देख रहा है ना वो कहेगा तुम चुप बैठो, तुम्हें नहीं पता वो क्या क्या कांड करके आया है, अभी तुम्हें अच्छा लग रहा है, ऐसे कहते हैं ना। हाँ, और ये इसको तुम्हें पता नहीं है, इसने आज ये गाली दी है या आज इसने हाथ उठाया, लेकिन इसने कितना सहा था, ऐसे बोल देते हैं ना, तो इसलिए उसको माफी मिलनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो हमने इतने जन्म लिए, 84 जन्मों का चक्र इस सृष्टि में लगाया है। भले हमारे सतयुग और त्रेता के जन्म तो बहुत अच्छे थे जिसमें कोई ऐसे कर्मों का हिसाब किताब नहीं बना, लेकिन द्वापर युग से जब हम आत्माएं उतरी हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस में आई हैं, जब हमने विकारों को अपने अंदर महसूस करके विकर्मों को करना शुरू किया है, तो जिस घड़ी से हमने विकर्म करने शुरू किए हैं हमारे हिसाब किताब अन्य आत्माओं के साथ बनना शुरू हो गए हैं। और ये उन्हीं कर्मों का विकर्मों का रहा हुआ हिसाब किताब है जो आज मेरे सामने आ रहा है। तो जब ये कॉन्शियसनेस आती है ना तो हमारी आंतरिक शक्ति जो है वो बढ़ जाती है। हाँ, मेरा ही कुछ किया हुआ आज मेरे सामने आ रहा है, छोड़ो जाने दो। हाँ, इस प्रकार से ये ड्रामा की कॉन्शियसनेस हमें मदद करती है। और चौथी चीज राजयोग। राजयोग होगा ही तब जब हम स्वयं को आत्मा समझेंगे और उस निराकार परमात्मा से अशरीरी होकर संबंध जोड़कर मन और बुद्धि से उस परमात्मा को याद करेंगे। अगर हम बाजार से दो वायर्स खरीद के ले आते हैं, हाँ, ट्रांसफार्मर से तार खींच के ले आते हैं, तो अपने घर के तार में तार जोड़ने के लिए उस तार के ऊपर से रबड़ हटानी पड़ती है। बिना रबड़ हटाए तार को गांठी लगा दो, टेप लगा दो, कुछ भी कर दो, करंट आएगा क्या? आ नहीं सकता। हम जब भी भगवान के सामने गए, ये चमड़ी ओढ़ के ही गए ना, चप्पल उतार के गए, लेकिन इस चमड़ी को उतारा क्या? इसको तो नहीं उतारा ना। उतारने का मतलब ये नहीं है कि देह का भान, देह को छोड़ना है, देह के भान को छोड़ देना है, तब ये योग होगा, ये परमात्मा की याद ठहरेगी, ये परमात्मा से मिलन हो सकेगा। तो सोल कॉन्शियसनेस इज द वेरी रूट ऑफ राजयोग मेडिटेशन। एंड सोल कॉन्शियस में जब हम मन की शक्ति और बुद्धि की शक्ति डेवलप करते हैं, तो जो हमारे अनादि संस्कार हैं, जो हमारे फंडामेंटल संस्कार हैं, गुण हैं, वो जागृत होते हैं। जैसे प्योरिटी, ये भी अपने आप में शक्ति है। एक कथा आती है हमारे पुराणों में जिसमें कहते हैं सती अनुसुईया की सतीत्व की जब महिमा सुनी तो ब्रह्माणी, लक्ष्मी और पार्वती तीनों चिंतित हो गई, हमसे भी ज्यादा ऊंचा कोई सतीत्व रख सकता है क्या? तो उन्होंने परीक्षा लेने के लिए मजबूर कर दिया कि ब्रह्मा विष्णु शंकर आप जाइए और उनकी परीक्षा लीजिए। अब वो तीनों साधु का वेश धर के गए और सती से कहा कि भिक्षा दो। कहती है लो, नहीं ऐसे नहीं लेंगे, आप निर्वस्त्र हो करके हमें भिक्षा दो। तो सती अनुसुईया ने कहा कि एक स्त्री तो नहीं हो सकती, तो तुमको मैं अपने प्रताप से बच्चा बना देती हूँ और फिर तुमको मैं फीडिंग करवाऊंगी। तो अब बच्चे बन गए तीनों त्रिदेव। अब नारद जी गए कि देखो देखो, हाँ अब तो वो तो बड़े होंगे, पालने से बाहर आएंगे। तो तीनों भागे भागे गई कि नहीं, ये तो हमने परीक्षा लेने के लिए आपके पास अपने पतियों को भेजा था, आप क्षमा करें, हम समझ गए कि आपके अंदर कितना बड़ी पावर है। तो प्योरिटी की शक्ति, इसीलिए हम बहनें, आपको पता है कहीं कहीं सेंटरों पर कभी कभी अकेले भी होते हैं, लेकिन हमारा चिंतन प्योर है, परमात्मा का साथ है, तो किसी की कुदृष्टि का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो भगवान ने हमें फीमेल होने के भान से परे कर दिया, तुम आत्मा हो, तुम शक्ति हो। फीमेल तो तुम केवल उसी कॉन्टेक्स्ट में हो जब परमात्मा के पास हो। परमात्मा, मीरा ने कहा था ना, जगत में केवल एक परमात्मा ही पुरुष है, बाकी हम सब जो है नारी है, स्त्री है। और अगर हम इस प्रकृति के कॉन्टेक्ट में आते हैं तो हर आत्मा एक पुरुष है, ये प्रकृति नारी बन जाती है। तो हम आत्माओं के अंदर नारित्व के भी गुण हैं, पुरुषत्व के भी गुण हैं। हाँ, मुझे कब क्या धारण करना है, बाकी नर और नारी तो केवल शरीर के कारण जेंडर है, बाकी आत्माएं तो सब एक सी हैं। तो हम उस भान में हैं तो दूसरे का जो संकल्प है ना, वो भी डाउन हो जाता है। तो ये है प्योरिटी की शक्ति। तब आपने सुना होगा आशा दीदी की क्लास में, हमारी गंगे दादी, मनोहर दादी जो है यमुना के घाट पे बिना दरवाजे के दिन रात रही और तपस्या की। कैसे की? हमारी दादियां बहुत सुंदर हुआ करती थी, और एज क्या थी, 23 साल, 24 साल, 25 साल, हद से हद 30 साल उस एज में। लेकिन परमात्मा की शक्ति थी और आत्मा होने का भान था, जिन्होंने ऐसी सेवाएं करके 140 देशों में यूं ही नहीं हो गया। हाँ, ये प्योरिटी की शक्ति है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि गिव मी 100 bachelors एंड आई कैन चेंज द वर्ल्ड। केवल 100 ब्रह्मचारी चाहिए, यहां तो हजारों हैं। क्यों नहीं हो सकता विश्व का परिवर्तन, मुश्किल है क्या? हो सकता है। तो नॉलेज में भी कौन सी शक्ति है? ये आत्मज्ञान, परमात्म ज्ञान जो हमें भगवान ने दिया है, इसने हमारे अंदर शक्ति को भरा है। हर खुशी में शक्ति है। हाँ, कहते हैं खुशी से बड़ी कोई खुराक नहीं। हर डॉक्टर कहता है दवा तो दे रहे हैं, लेकिन इनको खुश रखना, ज्यादा से ज्यादा तनाव से दूर रखना, यही कहता है। शांति में कितनी बड़ी शक्ति है। मुझे याद आता है कि जब मैं स्कूल में थी तो बच्चे जब असेंबली के लिए लाइन लगाते हैं ना, प्रेयर के लिए आते हैं, आपस में बात करो तो बड़ा शोर होता था। तो एक तरफ तो बच्चे बात कर रहे हैं, शोर हो रहा है, दूसरी तरफ टीचर्स चिल्ला रहे हैं कीप क्वाइट कीप क्वाइट। तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे, वो स्टेज पर जाते थे और क्या करते थे, बस और कोई काम नहीं है उनका, बस इतना ही करते थे। हाँ, धीरे धीरे सबने देखा 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 देखा, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता। हम शोर को मिटाना चाहते हैं, शोर से मिटेगा? आग को बुझाना चाहते हैं, आग से बुझेगी नहीं। ये है साइलेंस की पावर, पीस की पावर। हाँ, इससे बहुत कुछ हो सकता है। फिर प्रेम की शक्ति में तो क्या नहीं हो सकता। कहते हैं राधा जी ने तो श्री कृष्ण को भी मोर बना दिया। कैसे बना दिया? मोरों को एक बार डांस सिखा रही थी तो श्री कृष्ण ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा टाइम है, मैं भी मोर बन जाता हूँ। हाँ, तो आपके अंदर इतनी पावर है, जो अपने प्यार से आपने भगवान को परम धाम से इस धरती पर बुला लिया, भगवान को अपने प्यार में बांध लिया, तो प्रेम में कितनी शक्ति है। और ये प्रेम, ये खुशी, ये आत्मा का ज्ञान, यही हमें आनंद देता है। इस आनंद में जब मन मगन हो जाता है तो फिर कोई दुविधा, कोई प्रॉब्लम हमको टच नहीं कर सकते, मन को टच नहीं कर सकते। बाहर तो टच कर रहे हैं हमको, लेकिन अंदर धावा नहीं बोल सकते, वो शक्ति आ जाती है। तो ये जो आत्मा के साथ गुण है, ये तो अपने आप में ही एक पावर है। अगर हम एक एक गुण को देख ले, रियलाइज कर ले, इन पे मनन चिंतन ही कर ले, कुछ ज्यादा ना करें कैसे। हाँ, तो ये भी अपने आप में एक पावर हो जाती है। और भगवान तो हमें, ये जो राजयोग की क्लास हो रही है, ये जो 7 days का कोर्स होता है उसके बाद में, ये भगवान ने हमको इतना स्ट्रक्चर नहीं दिया था। भगवान तो जब आए, अपना परिचय दिया, हमारा परिचय दिया, और धीरे धीरे ये राज खोलने शुरू किए। तो वो जो राज खोलने शुरू किए, आज हम उनको मुरली के रूप में पढ़ते हैं। तो ये मैसेज है भगवान के, ये एक लव लेटर है भगवान का, ये ज्ञान है भगवान का, और ये उस परम सतगुरु का हमारे लिए दिशा निर्देश है। और ये राजयोग और कुछ नहीं है, कम्युनियन है, मीटिंग है, बातें हैं। कोई कहते हैं ना, हम क्या सोचें, हम जब योग में बैठे हम थक जाते हैं। कल बहुत सवाल उठ रहे थे, आंख खोल करके याद करें, बंद करके याद करें, बैठ करके याद करें, लेट करके याद करें, कैसे करें, है ना? क्योंकि आदत पड़ी हुई है ना देह के ऊपर। हाँ, तो संबंध को हम इस प्रकार से देखें ना, संबंध क्या है। चलो पहला संबंध बाप का है, बाकी छोड़ देते हैं, बाप का है। अब आपके बच्चे आपके सामने आंखें बंद करके बैठे और बात कर रहे हो, तो आप क्या कहोगे? आंखें खोल के बैठो मेरे सामने, मोबाइल छोड़ो, ठीक से बैठो, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, और ठीक से बोलो तुम क्या कह रहे हो, क्या मिन 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 कर रहे हो, प्रॉपर बोलो ना। हाँ, कहते हाँ, तो बाप से कैसे बात करते हैं? बाप को याद दिलाते हैं, तुम्हारा नाम ये है, तुम वहां रहते हो, ऐसे कहते हैं क्या? बस जाकर के दिल की बात बाप से कह देते हैं और आराम से बैठते हैं ना। वो कहता है पहले पद्मासन लगाओ, फिर मैं सुनूंगा तुम्हारी बात, ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो बाप है ना, वो दोस्त है ना। दोस्त क्या क्या करते हैं, जाएंगे फ्रिज खोल करके पानी पी लेंगे, पूछेंगे मैं तुम्हारा फ्रिज खोल लूं क्या, पानी पी लूं क्या, नहीं ना। हाँ, तो वो खुदा दोस्त है मेरा, तो रिलेशन जोड़ो ना। और उससे क्या बात करो, क्या कोई किसी बच्चे को सिखाता है कि बाप से बात कैसे करो, दोस्त से बात कैसे करो, टीचर से कैसे करो? ये थोड़ा शिष्टाचार के रूप में सिखा सकते हैं। हाँ, लेकिन हर एक का रिलेशन अपना होता है। पति पत्नी का रिलेशन में कोई तीसरा इंटरफेयर करके देखे, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम रहने दो, हम अपना रिलेशन देख लेंगे, हमें कैसे करना है, होता है ना। और तो हर एक को अपने रिलेशन खुद निभाने, खुद बनाने, खुद ही संवारने हैं। हाँ, तो जब हम राजयोग में बैठते हैं ना, हाँ, तो राजयोग शब्द से लगता है बहुत टेक्निकल चीज है कोई। तो भगवान ने कहा योग शब्द हटा दो, राजयोग हटा दो, क्या करो तुम मुझे याद करो। याद कैसे करो, प्यार से कि मतलब से? प्यार से याद करो, उसमें मतलब भले ही होगा। हाँ, बिना लॉलीपॉप के, बिना चॉकलेट के जब पिताजी घर आते हैं तो बच्चे भगा देते हैं, जाओ आइसक्रीम खरीद के लेकर आओ। हाँ, तो इसलिए शिव बाबा भी खाली हाथ बच्चों के लिए नहीं आया है, परम धाम से स्वर्ग की सौगात सतयुग बनाने के लिए लेकर आया है, और कुछ नहीं, तो अपनी जायदाद, अपनी जो पावर्स हैं वो हमको देने के लिए लाया है। तो ये पावर्स तो है ही, लेकिन कुछ कार्य व्यवहार में आने के लिए। कभी कभी लोग कहते हैं आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन ज्ञान ना, ज्ञान के समय तो अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या इसकी यूटिलिटी है, क्या पावर्स हैं? तो भगवान ने कहा है ये कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, ये परिवर्तन की बेला है, जब सतयुग आने वाला है। मैं आया हूं तुम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए। तो ऐसे समय में केवल तुम्हें एक कोठरी में बंद करके खुद को बैठ तो नहीं जाना है और मुझे याद करना है, नहीं, तुम्हें कार्य करना है, तुम्हें सेवा भी करनी है, और मेरी याद में, यानी कर्म योग जिसको कहते हैं, मेरी याद में हर कर्म करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, कुछ प्रिपरेशन करते हैं और उसके बाद हम एक्ट करते हैं। जैसे क्या होता है कि किसी भी क्लास में पहले थ्योरी पढ़ाई जाती है, उसके बाद उनको प्रैक्टिकल लैब में ले जाते हैं। अगर केमिस्ट्री की लैब में पहले ले गए तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, है ना। और अगर ज्ञान हमने केवल किताबों तक सीमित रखा, प्रैक्टिकल लाइफ में लेके ही नहीं आए, तो उस ज्ञान का कोई फायदा है ही नहीं, भूल जाते ना पढ़ करके। आप लोग भी, सबने लॉ पढ़ा है, सबने परीक्षा पास की है, राइट, याद है। हर लॉ को उस केस की लाइट में पढ़ा जाता है, फिर सर्कमस्टेंसेस के अनुसार इंटरप्रेट किया जाता है, और फिर उसको आपके फैक्ट्स ऑफ द केस में अप्लाई किया जाता है। जजमेंट्स तो बहुत सारे हैं जी सुप्रीम कोर्ट के, और कितना माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं, हाँ, अप्लाई कैसे करना है। तो भगवान ने कहा है कि क्योंकि तुम जीवन जी रहे हो, तुम्हें कोई सन्यासी होकर के तो नहीं बैठना है, तुम जीवन जी रहे हो, तो इस जीवन कोई गृहस्थी कोई तुम्हें कमल बनाने के लिए आया हूं, है ना। तो तुम्हें कमल बनना है तो कमल तो कीचड़ में ही खिलेगा, तो कीचड़ में रहते हुए मुझे कमल कैसे बनना है, उसकी पावर्स भगवान आकर के हमको देते हैं, जागृत करवाते हैं। तो ये 8 पावर्स हैं, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। तो पहले जैसे हम देख रहे हैं पैक्ड अप बैग्स, दीदी ने बहुत अच्छी बात एक कही थी आप लोगों से, जब आप लोग यहाँ आए तो आप लोगों ने कितनी तैयारी की है ना, डॉक्यूमेंट्स भी रखने हैं, सामान भी रखना है, कौन से कपड़े कौन से जूते, कितने अदद हमें सामान लेकर के जाना है, कितना मैं उठा सकूं, कितना कुली करे, क्या खाने को लेके जाना है, कितनी सारी बातें सोची है ना, क्या वहां पे ड्रेस कोड होगा, बहुत लोग हमसे ये भी पूछते हैं, ये हर एक चीज आपने सोची तैयारी की। फिर आप ये भी सोचते हो कि जा तो रहा हूं मैं इतने दिनों के लिए, तो घर भी थोड़ा पीछे समेट करके जाऊं, माताएं सोचती हैं फ्रिज खाली करके जाऊं, कितनी सारी चीजें सोचते हैं, अगर घर बंद करके जा रहे हैं तो, घर खोल करके जा रहे हैं तो, हर चीज को हम व्यवस्थित करके रखना चाहते हैं और करते जाते हैं करते जाते हैं, पीछे से जो है भाई साहब बोलेंगे अरे मैं टैक्सी लेकर के आ गया हूं, बंद करो अब चलो और चलो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, जो जैसा होता है जितना होता है सो छोड़ छाड़ करके, नहीं तो ट्रेन में सो जाएगी फ्लाइट में सो जाएगी, है ना। अभी ये कलयुग का समय जाने वाला है, भगवान ने हमारे परिवर्तन की बेला को इस प्रकार से कह दिया है कि अब सतयुग में चलने का समय है और सतयुग से पहले परमधाम चलने का समय है। तो जब हम ये शरीर छोड़ेंगे तो हम अपने साथ क्या लेके जाएंगे, कुछ लेके जाएंगे, हाँ, कर्म। तो हम अपने साथ या तो पुण्य लेके जाएंगे या पाप लेके जाएंगे, हम अपने साथ दुआएं लेके जा सकते हैं, हम अपने साथ आशीष लेके जा सकते हैं, है ना, गुड विशेस लेकर के जा सकते हैं, ये चीजें। अब क्वेश्चन ये है कि हमने कितना कमाया है, दुआएं कमाई हैं, पुण्य कमाया है, हाँ, रिश्ते कमाए, पैसे कमाए, नाम कमाए, रुतबा कमाया, बहुत कुछ कमाया, लेकिन ये हमने कितना कमाया है। एक सेठ था, बहुत धनवान था, लेकिन उसका व्यवहार बहुत खराब था और कंजूस भी बहुत था, हाँ। तो उसने ये देखा कि उसके छोटे भाई से तो सब बड़े प्यार से बात करते हैं, उससे उतने प्यार से बात नहीं करते, सम्मान नहीं देते। एक बड़े सिद्ध महात्मा आए हुए थे, जाकर के पूछा कि भाई ऐसे कैसे करूं, ऐसा और, कहते अब कोई फायदा नहीं है, अब तुम्हें कोई नहीं सम्मान देगा। कहते क्यों, कहते 7 दिन के अंदर तो तुम मरने वाले हो। तो क्या कह रहे हो महाराज, कर लो भाई, कुछ करना चाहो कुछ कर तो हो पाओगे नहीं, तुम 7 दिन के अंदर मरने वाले। कहते अरे, अब जब वो आया उसके यही चिंतन चल रहा है, मैं तो मरने वाला हूँ मरने वालों, फिर मैं क्या करूंगा, घर का क्या करूं, कारोबार का क्या करूं, नौकरों का क्या करूं, इसका क्या करूं, उसका क्या करूं। तो व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन आना शुरू हुआ, दान नहीं दिया उसने लेकिन उदार हो गया, फर्क पड़ता, कोई दान ही देना की जरूरत नहीं है, हाँ। एक रात सो के उठा जब सुबह, अच्छा अभी तो जिंदा हूं, उसने कहा था 7 रोज मैं मरने वाला हूं, फिर कुछ किया, फिर दूसरे दिन उठा, फिर तीसरे दिन उठा, 7 रोज बीत गए वो तो मरा ही नहीं। फिर गया उसके पास, महाराज आपने कहा था मैं 7 दिन के अंदर मर जाऊंगा, 8 दिन पूरे हो गए मैं तो जिंदा हूं। कहते ये बताओ तुम्हें सम्मान मिला? कहते हाँ सम्मान तो मिल रहा है, प्यार मिला? हाँ प्यार भी मिल रहा है। कहते तो फिर? कहते पर महाराज मैं तो मरा ही नहीं। कहते कितने दिन होते हैं सप्ताह में? 7। कहते हैं बस सोमवार मरोगे, नहीं तो मंगल मरोगे, नहीं तो बुध मरोगे, तो 7 ही दिन के अंदर ना, 8वां दिन तो होता ही नहीं। तो हमें मरना तो है, लेकिन एक के मरने पर संसार खुशियां मनाता है और एक के मरने पर लोग दुख करते हैं। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, मरने मरने में अंतर है, जाने जाने में अंतर है। हमने बहुत खुद को फैला रखा है, बिखरा रखा है, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो शायद उतनी प्रैक्टिकल या इम्पॉर्टेंट या अर्जेंट नहीं होंगी आपकी लाइफ में, लेकिन हमारी बुद्धि है ना पकड़ के रखती है। एक बीके भाई, उनसे उन्हीं के एक साथी ने बड़े मजाक से कहा, भैया दाढ़ी बना लिया करो, क्यों नहीं बनाते हो? तो उसने जवाब दिया, कौन देखता है। अब ठीक बात है, जब मैं सोल कॉन्शियस हो गई तो मैं दाढ़ी बनाऊं ना बनाऊं क्या फर्क पड़ता है, और जब सभी सोल कॉन्शियस है तो कौन मेरी दाढ़ी देखता है? तुम बॉडी कॉन्शियस हो तब तो तुम मुझे देख रहे हो। कहने का भाव ये था। तो मित्र ने कहा, भाई किसी देवता के दाढ़ी देखी है क्या? तो तुम भी बना लो, देवता बन रहे हो, दाढ़ी बना लिया करो। तो कहता है, बात तो तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है मैं दाढ़ी बनवा लूंगा लेकिन मुच्छे नहीं मुड़वाऊंगा। हाँ, ये केवल हंसी की बात है, लेकिन बात पकड़ की है। हम कितनी छोटी छोटी चीजों को, कहां कहां हम चार क्लब्स के मेंबर बने हुए हैं, हो सकता है दो तो उसमें ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हों, लेकिन हम अपना फिर भी समय शक्ति वहां खर्च कर रहे हों। कितनी सारी ऐसे ऐसे हमारे फैलाव बहुत है। तो भगवान की याद में जब बैठते हैं तो वो फैलाव याद आते हैं, याद करने नहीं देते, बुद्धि खींचेगी ना, हाँ कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये कितना कितना करना है, सेवा पड़ी हुई होगी तो कहां से हम योग में बैठेंगे। लेकिन फिर बुद्धि कहती है कि एक झटके में, एक सेकंड लगेगा छोड़ के जाना, चाहे किसके रोके रुकाए कोई, और किसके जाने से रुकाए कोई, होता है क्या? इंग्लिश में एक पोयम थी, मेन मे कम एंड मेन मे गो बट आई गो ऑन फॉर एवर। ये एक ब्रुक का सॉन्ग था, एक रिवर का सॉन्ग था, है ना। हमारे जाने से भी कुछ फर्क पड़ेगा, लेकिन रुकेगा तो कोई, कोई काम किसी का ठहरेगा, कोई कंपनी बंद होगी, कोई फर्म बंद होगी, कुछ नहीं होने वाला है। ये हम अपने को बस खुश करते रहते हैं, खुश फहमी है हमारी कि सब हम ही करते हैं। दो एक्सट्रीम्स में जी रहे हैं हम लोग, एक खुश फहमी है, एक गलत फहमी है। खुश फहमी ये है कि मैं ही सब करता हूँ, कर्म कॉन्शियस है ना, हाँ मैं ही सब करता हूँ। और गलत फहमी ये है कि भगवान ही सब करता है, भगवान कुछ नहीं करता, कर्म करने के लिए हम ही बहुत हैं। भगवान का क्या कार्य है? आकर के हमको सद्बुद्धि दे देता है, ये काम है उसका बस। बाकी बैठ बैठ के पत्ते पत्ते को हिलाना ये उसका काम नहीं है। क्योंकि अगर भगवान का काम होता तो फिर भगवान का पाप और पुण्य बनता, हमारा थोड़ा ही बनता। हम क्या कहते हैं, पाप आत्मा पुण्य आत्मा, या ऐसे कहते हैं पाप परमात्मा पाप पुण्य परमात्मा, ऐसे कहते हैं क्या? तो कर्म मुझ आत्मा ने किए हैं ना शरीर के द्वारा, तो ये मुझे डिसाइड करना है, सब यही रह जाने वाला है। तो फिर अगर हम किसी चीज के ऊपर एक मिनट बाद भी अगर ध्यान देंगे तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल नॉट depreciate, deprecate, right? There might be some things which require our immediate attention, urgent attention, but होता क्या है कि हम इतनी चीजों पर attention दे देते हैं और जिस चीज पे हमने attention दिया है वो हमारा part बनती चली जाती है और हम उतने ही बिखरते चले जाते हैं। हाँ, मैं जितना बाहर जाती हूँ, कहते हैं मैं बाहर गया मैं बिखर गया, मैं भीतर गया मैं भी तर गया। तो ये है पैकिंग अप, ये राजयोग में प्रैक्टिस करते करते, एक दिन में नहीं होता लेकिन करते करते लगे रहते हैं तो होना शुरू हो जाता है, फिर इजी हो जाता है। सचिन भाई ने बताया ना, द पॉज बिफोर जजमेंट। हाँ, तो ये पॉज ही तो लेना है, और क्या करना है? मैं देखूं, रुकूं जैसे रेड लाइट पर, खुद को तैयार करूं और फिर दौड़ा दूं गाड़ी को, बस यही करना है। अपने रोज के काम में भी, ट्रैफिक कंट्रोल ऑफ थॉट्स में भी यही करना है। बहुत परप्लेक्स्ड हैं, बहुत सारी फाइल्स, बहुत सारे केसेस, एक ही दिन में चार केसेस उसी में घूम जाएंगे, इस केस का ये था, इस केस का ये था, लेकिन वही एक मिनट का, आधे मिनट का जो पॉज है वो मुझे आगे खुद को ऑर्गेनाइज करने में मदद करता है। पैकिंग अप इज जस्ट ऑर्गेनाइजिंग माई सेल्फ, और कुछ नहीं है। The second power is the power to tolerate, सहने की शक्ति। अब एक क्वेश्चन उठता है कि सहना शक्तिशाली की निशानी है या कमजोर की निशानी है? कहने में तो हर कोई ये कह देता है कि ये शक्ति की निशानी है, जब करने पर आता है मैं ही सहूं क्या, मुझी को सहना है क्या, कब तक सहूं, कहां तक सहूं, कितना सहूं, आती है ना ये बातें। हाँ, अब एक बार अगर ये सोचें, हमने हमारे कारण भगवान ने कितना सहा है हमें पता है? हमने क्या कहा, तू ठिक्कर में है तू भित्तर में है, तू कीचड़ में है तू चप्पल में है, तू कुत्ते में है तू बिल्ली में है, कहा कहा उसको, है ना, कणकण में व्याप्त है, गाली दी कि नहीं दी उसको? उसने तो कभी नहीं कहा कुछ हमको, और ही प्यार से समझाता है। हम जो रोज सवेरे परमात्मा के महावाक्य मुरली में सुनते हैं, उसकी शुरुआती होती है मीठे बच्चे, वो नहीं जानता क्या कि कड़वे बच्चे बैठे हैं, खट्टे बच्चे बैठे हैं, लेकिन वो हमें किस नजर से देखता है, मीठे बच्चे, इनका मूल गुण तो मिठास है ना, अभी भूल गए हैं, कोई बात नहीं, मैं जगा दूंगा, मीठे बन जाएंगे। ऐसे अगर ये दृष्टि मेरी बन जाए कि जो सामने वाला है वो है तो मेरे ही बाप का बच्चा ना। एक बच्ची थी, पहाड़ के ऊपर रहती थी, घर था, एक साधु था, वो पहाड़ के नीचे तपस्या करता था। तो उसका काम क्या था, साधु की सारी आवश्यकताओं को पूरा, छोटी सी बच्ची थी, 8-10 साल की बच्ची रही होगी, और 4-5 साल का उसका भाई था। वो जितनी बार पहाड़ से नीचे उतरती अपने भाई को गोद में लेकर आती, फिर गोद में लेके जाती, खाना लाती, पानी लाती, बर्तन लेकर के जाती, दिन में 2-3 बार। तो एक बार साधु ने कहा, तो थक नहीं जाती इतने भारी भाई को उठा उठा करके लाती, क्यों नहीं छोड़ के आ जाती, इतना बोझ उठाए फिरती है? तो वो लड़की कहती है, ये बोझ नहीं, ये मेरा भाई है, ये भाई है। तो हम अपनों के गुनाह तो माफ कर देते हैं ना, नहीं गुनाह नहीं कहेंगे, गलतियां कहेंगे, छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो अपना है तो वो सब माफ है, और पराया है तो भाई अपने लिए तो सब माफी मांग लेते हैं भगवान से, दूसरे के लिए कहते हैं उसको जरूर सजा देना, उसको सबक जरूर सिखाना चाहिए, मेरे लिए तो मैं एडवोकेट हूं और दूसरे के लिए मैं जज हूं, यही होता है ना। तो अगर मेरे ही बाप का बच्चा है, मुझ आत्मा का भाई है, तो वो जो दृष्टिकोण डेवलप होता है उससे यूनिवर्सल ब्रदरहुड आता है, उससे सहने की शक्ति जो है हमारे अंदर असीम हो जाती है, हम कितना भी सह सकते हैं, फिर ये कहने की बात नहीं आती है, कोई बात नहीं। माँ कभी बच्चे से कहती नहीं है, केवल सहती है, कुछ कह के जी लेती है, कुछ सह के जी लेती है ना, जीते तो सभी हैं, कोई कहकर कोई सह के। मुझे कैसे जीना है, हमारी बड़ी दीदी थी, दीदी मनमोहिनी, जो दादी प्रकाशमणि जी के साथ में एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ थी, कहती थी जीवन भर क्या करना है, झुक झुक सिख सिख मर मर, ऐसे ही चलना है, ऐसे चलो जो मरे हुए को तो कोई मार ही नहीं सकता, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, घास जो है वो जिंदा रहती है बड़े बड़े तूफानों में। तो ये मेरे अंदर है कि मुझे कितना झुकना है, ये मेरे अंदर है कि मुझे कितना सहना है, और मैं सह सकती हूँ, क्यों नहीं सह सकती, भगवान है ना मेरे साथ में, और फिर इतना किया हुआ वही तो मेरे सामने आ रहा है, कोई नई चीज नहीं सामने आ रही, जो जन्म जन्मांतर से मैंने गुल खिलाए हैं वही सुगंध मेरे सामने आज आ रही है, वही चीजें हैं, इसलिए उनको सह करके टाल जाओ तो खत्म हो जाएगा हिसाब किताब, और मैंने अगर उस पर रिएक्शन दे दिया, नया हिसाब बना दिया, तो फिर चलते चलो चलते चलो चलते चलो बोझ लेकर के। और केवल सहने पे समाप्त नहीं कर देना, उसको समाना भी चाहिए। कई लोग होते हैं बहुत सहते हैं, बहुत करते हैं दूसरों के लिए, और फिर जगह जगह गा देते, तो पता है मैंने उसके लिए कितना किया, उसने मेरे लिए क्या किया, तो पता नहीं है मैं कितना सहन कर रही हूं, तो सहा तो सही नो डाउट, लेकिन समाया नहीं। भगवान की याद हमें समाने की शक्ति दे देती है, जैसे माँ अपने बच्चे के हर बात को समा लेती है, बाप से भी नहीं कहती है, समा लेती है, हाँ, ऐसे हमारा भी वो आत्मा के साथ में जो भी संबंध रहा, जो भी व्यवहार रहा, हिसाब किताब रहा, हो गया, जिसको हम मैनेजमेंट टर्म्स में कह देते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट, लेकिन वो है समाना। और कोई कोई भी हमारे सामने आए, हम उसको अपना ऐसा बना लें, अपने में समा लें, वो मेरा बन जाए, वो मेरे जैसा बन जाए। जैसे नदियां सागर में समा जाती हैं तो सागर बन जाती है, फिर नदी नहीं रहती है। कोई भी आए, पहले दिलों में इतनी जगह थी कि एक कमरे में लोग 10 लोग 12 लोग रह रहते थे, आज 10 कमरों के घर में अकेले अकेले रहते हैं और फिर भी कहते हैं मुझे स्टडी रूम अलग चाहिए, प्ले रूम अलग चाहिए, बेडरूम अलग चाहिए, है ना। घरों में जगह है पर दिलों में नहीं रह गई। तो भगवान हमारा दिल बहुत बड़ा बना देता है, बहुत बड़ा बना देता है। उसका दिल कितना बड़ा है, सारी दुनिया को समाया हुआ है ना उसने अपने दिल में, उसने मुझे अपने दिल में। हमने प्रार्थनाओं में क्या कहा, हमारे प्रभु अवगुण चित्त न धरो, यही कहा ना, हे भगवान मेरे अवगुणों को अपने चित्त पे नहीं रखना, अगर तुमने रख लिया तो तुम सजा दे दोगे, यही मतलब है ना कहने का। तो अपने चित्त पर मेरे अवगुणों को नहीं धरना, लेकिन हम अपने चित्त पर कितनों के अवगुणों को रख लेते हैं, फिर हम अवगुणी बन जाते हैं, क्योंकि हमने स्थान दे दिया, हमारा ही हो गया अब, है ना। तो कचरे को तो बाहर ही फेंका जाता है ना, घर के अंदर तो नहीं रखा जाता। तो सागर क्या करता है, रतन समा लेता है और किचड़ा जो है वो किनारे पर फेंक देता है। तो जिस जिस से मिलती जाऊं मैं आत्मा, जो विशेषता देखूं, गुण देखूं, अपने अंदर समाती जाऊं, बाकी छोड़ दूं, है ना। तो ये समाने की शक्ति मेरे अंदर परखने की शक्ति को डेवलप कर देगी, क्योंकि समाना तो मुझे गुणों को है, विशेषताओं को है, तो मुझे परखना तो पड़ेगा ना कि सामने वाला क्या कर रहा है, जौहरी बनना पड़ेगा ना। सब पत्थर है, उस पत्थर में जो जानता है कि वो हीरा है। तुमने क्या किया, चंदन का एक जंगल, एक राजा ने एक लकड़हारे को दे दिया कि तू इतनी मेहनत करता है, ले तू चंदन का जंगल ले ले। उसने क्या किया, चंदन की लकड़ी काट काट करके कोयला बना बना के बेच डाला। वैल्यू, ये परखने की शक्ति है, मुझे देखना है ना। जैसे हंस दूध को पानी को अलग कर देता है, कंकड़ को मोती को अलग कर लेता है, मुझे क्या चुगना है, ये मेरे हाथ में, चॉइस इज इन माय हैंड्स। माय फादर गॉड फादर ओनली टेल्स मी, टीचेस मी, गाइड्स मी, ही डज नॉट डायरेक्ट मी, ही डज नॉट इंस्ट्रक्ट मी, ही डज नॉट कंपेल मी। टुडे द चॉइस इज माइन, Tomorrow the verdict will be his, right? And it is fully justified. और ये जो परखने की शक्ति है, ये मेरे अंदर निर्णय करने की शक्ति को पैदा करती है। पुराने जमाने में जो तराजू होते थे, तो वो तराजू ठीक है या नहीं है, तोलने से पहले देखते थे कि वो तराजू ठीक है या नहीं है। तो खाली बिना कुछ रखे हुए, ना वजन रखा है उसके अंदर, ना कोई सामान रखा है, ऐसे ही उठा के देखते थे। क्या देखते थे उसमें, बराबर है कि नहीं, पल्ले बल्ले बराबर है कि नहीं, वो कैसे पता चलता था। नहीं, सामान तो बात की बात है, हाँ, यस, उसका जो कांटा है वो एकदम सेंटर में होना चाहिए। अब परखना और निर्णय, ये दोनों शक्तियां ना, दे गो हैंड इन हैंड, राइट। हमने अपनी आंखों के ऊपर इतने सारे चश्मे पहन रखे हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस के, हमारी एजुकेशन के, हमारे सोसाइटल लॉज नॉर्म्स के, हमारे रिलीजन के, कास्ट के, कंट्री के, पेट्रियोटिज्म के, हमारे पढ़ाई के, रुतबे के, हमारी डिग्रीज के, बहुत सारे अलग 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 रोल्स में खुद को हमने देखा है, माना है और खुद को समझा है। तो ये जो चश्मे हैं ना, इन चश्मों से हम किसी को देखते हैं, कोई एक गरीब आया, उसने चोरी की, तो हमारा नजरिया बन जाता है कि सारे गरीब चोर होते होंगे। ये नजरिए बनते चले जाते हैं और फिर उन नजरियों से हम नजर देख, हमारी नजर काम करती है, जिसको हम बायस कह सकते हैं, जिसको हम पूर्वानुमान भी कह सकते हैं, पूर्वाभास भी कह सकते हैं, पूर्वाभ्यास भी कह सकते हैं, और उसको हम ये भी कह सकते हैं पूर्वाग्रह। ठीक है ना, उन्हीं से हम देख रहे हैं तो परख नहीं पा रहे हैं, राइट। ये चश्मे जब हटेंगे तो परखेंगे। भगवान ने हमको एक ही ज्ञान की तीसरी नजर दे दी है, तुम आत्मा हो, बस, राइट। आत्मा की नजर से देखो, आत्मा को देखो, वो ओरिजिनली 7 क्वालिटीज से भरपूर है। वो ओरिजिनली देवता बन करके, अब दैत्य भले ही बन गई है पर ओरिजिनल वो देवता थी, राइट। उसके अंदर दैवी गुण हुआ करते थे। कभी कभी हम सर्कमस्टांसेस से या सिचुएशन में या फॉर द टाइम बीइंग कोई गलती कर बैठते हैं, ऐसे होते हैं ना। पढ़ाई तो हमने बहुत करी लेकिन पेपर लिखते समय कुछ घबरा आ गए, कुछ पसीना आ गया, कहीं ध्यान भटक गया, कुछ भी हुआ, हम भूल गए, हम वो नहीं लिख पाए, यही हुआ ना। तो वो गलती उस समय की, हम करना नहीं चाहते थे, गलती हो गई, हमसे मान लिया, राइट, हो गई। तो हम हर एक को ये समझाने की कोशिश करते हैं, भाई मेरा इंटेंशन नहीं था, पता नहीं कैसे बस हो गया, ऐसे ऐसे कहते हैं ना, हम अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं, मुझे क्या सूझा उस समय, मैंने ऐसे क्यों बात कर ली, ऐसे कहते हैं, हम आपको खुद से ही बात करते हैं ऐसे, राइट। तो ये जो एक्सक्यूजेस हैं वो सामने वाले के ऊपर क्यों नहीं दे सकते, उसके भी तो कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। हमने किसी को राह चलते नमस्ते की, उसने देखा जरूर लेकिन उसने नमस्ते नहीं किया, अरे भाई बहुत दिमाग खराब हो गए, आजकल पैसा बहुत आ गया, अब हम क्या चीज हैं, यही दिमाग में आता है ना। वो दो दिन बाद फोन करके हमको कहे, आई एम सॉरी, हमने देखा तो था आपको लेकिन मेरी मदर हॉस्पिटलाइज थी, मुझे जल्दी जल्दी वहां जाना था, मेरे दिमाग में वो सब चल रहा था। तब हम कहेंगे, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं समझ गई। लेकिन मैं समझी थी क्या? नहीं, नहीं समझी। और दो दिन तक हमने कैसे उसके प्रति अपने संकल्प चलाए, कितनी बद्दुआएं दे डाली उसको, हुआ कि नहीं हुआ? तो परख नहीं पाए ना कि चलो उसने नहीं देखा होगा, कोई बात नहीं, नहीं देखा, नहीं देखा, नहीं की नमस्ते, नहीं की, मेरा कौन सा घट गया, क्या घट गया मेरा? आत्म सम्मान नहीं होगा ना तो दूसरों का सम्मान न करना अपमान लगेगा, और आत्म सम्मान है, स्वमान है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, कोई, मैं भगवान मुझे सम्मान दे रहा है, मुझे दुनिया के सम्मान की चिंता है क्या? हाँ, तो ये है चश्मे जो हमें भगवान हमारे को सारे चश्मे उतरवा देता है, अभी मैंने लगा रखा है, केवल आत्मा के नेत्र देता है। हाँ, उससे देखो, जितनी बार हम उसको एक्सरसाइज कर लेते हैं, बुद्धि का नेत्र, आत्मा का नेत्र, उतनी बार हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। और राजयोग में हम करते ही क्या है, यही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आई एम अ सोल, चलते फिरते उठते बैठते, मैं इस सोफे पर आकर के बैठ गई, राइट। तो जब मैं बैठी हूं तब मैं देख रही हूं कि भाई मैं ठीक हूं, कंफर्टेबल हूं, ठीक से बैठी हूं कि नहीं। एक बार बैठ गई तो मुझे बार बार देखने की जरूरत है कि मैं बैठी हूं कि नहीं, बैठी हूं कि नहीं, नहीं ना। ऐसे ही सोल भी इस बॉडी में आके बैठ गई, अब उसे बार बार देखने की जरूरत नहीं है। प्लीज डोंट बी मेस्मराइज बाय द फैक्ट या बाय द वर्ड्स दैट आई हैव टू सी द सोल, आई हैव टू सी द लाइट। इट्स नॉट सीइंग, इट्स जस्ट नोइंग, इट्स जस्ट अंडरस्टैंडिंग, इट्स जस्ट एक्सपीरियंसिंग, बस महसूस था है। मैं बैठी हूं ना सोफे पे, ऐसे ही मैं आत्मा बैठी हूं ना, राइट। आप सब आत्माएं बैठे हैं ना इस बॉडी के अंदर, बस बैठे हैं ना, तो बस उन्हीं को देखना है जो बैठे। सोफे को कोई देखता है क्या? जब आप, हम बात कर रहे हैं तो आप सोफे को देख रहे हैं या मुझे देख रहे हैं? बॉडी की आंखों से आप बॉडी को देख रहे हैं, राइट, राइट। ऐसे ही मैं आत्मा इस बॉडी में बैठ के इस बॉडी को क्यों देखूं, इस पे बैठने वाले को देख लूं? तो इज इट इजी और डिफिकल्ट? हाँ, इजी। तो जब हमने सोल को देख लिया ना तो बहुत सारे पर्दे निकल गए, बहुत सारे पर्दे निकल गए, राइट। अब जब मैं यहां बैठ गई तो मुझ आत्मा की बुद्धि का मन का तार परमात्मा से जोड़ना बहुत ईजी है, क्योंकि वो तो सदैव अशरीरी है। मुझे तो अशरीरी बनना पड़ता है, समझना पड़ता है, क्योंकि बॉडी में आने की प्रैक्टिस है, लेकिन वो तो सदैव अशरीरी है ना। तो जब मेरी बुद्धि एकाग्र होगी, जब केओस जो होगा, जो अंदर का ट्रैफिक जैम ऑफ थॉट्स होगा, उसको क्लियर करते गए, क्लियर करते गए, क्लियर करते गए, तब तो उस तक पहुंचे। तो जब बुद्धि का कांटा सीधा है तो हम वे कर सकते हैं पॉसिबिलिटीज को, है ना। तो निर्णय करने की शक्ति अपने आप बढ़िया होती जाती है, बुद्धि कुशाग्र होती जाती है। एकाग्र होगी तो कुशाग्र होगी। एक को आगे रखा ना मैंने, बस वो मेरे आगे है। हाँ, इतनी सारी चीजों को सामने रख लेंगे तो कैसे उसमें से, अब हे स्टैक में से सुई ढूंढना तो बहुत ही मुश्किल काम है ना, है ना। लेकिन अगर सुई कोई ढूंढ रहे होंगे और हे स्टैक नजर नहीं आ रहा होगा तो दिख जाएगी, कहीं ना कहीं चमक जाएगी, वो चमक जाएगी ना। हाँ, तो उस सुई पे नजर केंद्रित करनी है ना। हाँ, तो एक को आगे रखा तो कुशलता आ गई, तो बुद्धि कुशाग्र हो गई, तो निर्णय ठीक होगा, प्रॉपर होगा, जल्दबाजी में भी नहीं होगा तो देरी में भी नहीं होगा, जो होगा वो बेस्ट से बेस्ट होगा। और उसके बाद जो कर लिया फिर निश्चिंत, भगवान कल्याणकारी, मेरा बाप कल्याणकारी, ये ड्रामा कल्याणकारी, बुरा कैसे हो सकता है। जिसका बाप खुद भगवान हो, भाग्य विधाता, उसका बुरा भाग्य लिखेगा क्या वो? भाग्य तो अच्छा ही है, है ना, भाग्य तो बहुत अच्छा है, पर उस भाग्य को हम कितना रियलाइज करते जाते हैं ये मेरे ऊपर बात है। ठीक है, तो निर्णय करने की पावर हमारी इस राजयोग में इस प्रैक्टिस से बढ़ती चली जाती है। और एक जो सबसे बड़ी बात जो आज समय के अनुसार अति 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 आवश्यक है, वो है सामना करने की शक्ति। समय बहुत विकट चल रहा है। भगवान ने हमको कहा है तीन तरीके से विश्व का या कलयुगी समाज का विनाश सामने खड़ा है। एक है नेचुरल कैलेमिटीज के द्वारा हम प्रकृति की हालत देखते जा रहे हैं। दूसरा है न्यूक्लियर पावर्स कहो, वर्ल्ड पावर्स कहो, उनके आपस के कॉन्फ्लिक्ट्स कहो, उनके द्वारा। और तीसरा है सिविल वॉर कहो या गृह युद्ध कहो। तो अगर भारत में ही देख लें, देश वैसे तो दुनिया में तो देश देश का दुश्मन है, और अगर भारत में देख लें, धर्म धर्म का दुश्मन, जात जात का दुश्मन, प्रांत प्रांत का दुश्मन, हर घर में देख लो तो भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। रोज सरकमस्टेंसेस विकराल ही होते जाने हैं, क्योंकि अगर अति नहीं होगी तो अंत नहीं होगा। कलयुग का अंत हम सब चाहते हैं ना, चाहते हैं कि नहीं? डीमोरल जो भी है वो सब खत्म होना चाहिए, हम चाहते हैं ना। हाँ, सब कुछ अच्छा अच्छा होना चाहिए, हम चाहते हैं ना। हाँ, तो ये जो विनाश है ये अकल्याणकारी नहीं है, ये कल्याणकारी है। हाँ, ये कल्याणकारी है, क्योंकि कलयुग जाएगा नहीं तो सतयुग आएगा कैसे? कलयुग को तो जाना होगा ना। नरक खत्म होगा तो स्वर्ग की स्थापना हम कर सकेंगे। वैसे तो स्वर्ग की स्थापना चल रही है, जब स्थापना होगी तो नरक का विनाश होगा, हम उसको जी सकेंगे जब नरक नहीं होगा, राइट। तो अगर उतनी बड़ी चीजों में भी हम ना जाएं तो बहुत छोटे छोटे हमारे लिए सबसे हृदय विदारक चीजें क्या होती हैं? अपनी मौत भी इतने हृदय विदारक नहीं होती, नहीं होती ना, लेकिन अपनों का जाना हृदय विदारक हो सकता है, या अपनी किसी चीज का जाना वो हृदय विदारक हो सकता है, है ना। लेकिन भगवान ने ये सारे डर निकाल दिए, सारे भयों से मुक्त बना दिया। हाँ, उसको तो कहते ही भूतनाथ है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के भूतों का नाश करने वाला। तो जो भूतनाथ है, तो हम बच्चों को भूतनाथ से ही नहीं डर है? डर है क्या? प्यार है भगवान से, डर है क्या? नहीं ना। हाँ, डर निकाल दिया। क्या डर निकाल दिया? ये आत्मा, इसने एक शरीर छोड़ दिया, दूसरे शरीर में चली गई। कोई बहुत बीमार था, बहुत कष्ट में था, किसी भी प्रकार के दयनीय स्थिति थी, अरे वो गया। बच्चा बनेगा तो 8-10 साल कुछ तो बेचारा बिना चिंता के गुजारेगा, तो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? बुरा मेरे लिए हुआ, क्योंकि मुझे जो उससे सुख की प्राप्ति होती थी, अब मुझे अल्टरनेट देखना पड़ेगा, मुझे मेरा अटैचमेंट है उसका, तो मुझे उसको भुलाना पड़ेगा, मुझे अकेलापन लगेगा, ये मेरे लिए बुरा हुआ। उस आत्मा के लिए क्या बुरा हुआ? एक सर्कमस्टेंस से गई है, नए सर्कमस्टेंस में, नई फैमिली में गई है ना, तो उसको प्यार मिलेगा। बच्चे को तो सब प्यार करते हैं ना, हाँ ठीक है ना। तो ये आत्मा की ज्योत तो सदा जग रही है ना, तो बुरा क्या होगा? और जो भी कहते हैं, बहुत पुराना गीत है, जिसका साथी हो भगवान उसको क्या रोकेगा, आंधी और तूफान। भगवान मेरे साथ है, सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी मेरे साथ है, मेरा बुरा हो कैसे सकता है? और जिस चीज में मुझे बुराई दिखाई देती है, मान लो ये तो गड़बड़ हो गई बात, हाँ उसमें भी कल्याण देखने का अगर मेरा दृष्टिकोण डेवलप हो जाए, When I landed into hot waters, I decided to take a bath. बात खत्म। That is an opportunist, that is an optimist view of life. God brings men to deep waters not to drown them, but to cleanse them. है ना? हमें वो क्लिफ के एज तक लेके जाता है, गिराने के लिए नहीं, उड़ाने के लिए। तो ऑल सर्कमस्टेंसेस, ऑल प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ आर देयर फॉर माय प्रोग्रेस। पेपर नहीं होगा तो बच्चा अगली क्लास में जा सकता है क्या? नहीं जा सकता है ना, तो पेपर तो देंगे ना। और पेपर देने के बाद जब वो नई क्लास में जाता है ना, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस कितना आता है, मुझे ये चीज आती है ना। कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो शक्ति ना, वो पावर है। तो कोई भी चीज हो, अब प्रॉब्लम ये होती है, पिछली कॉन्फ्रेंस में एक डेलीगेट ने सवाल पूछा कि जी मैंने दया करके एक व्यक्ति को बस में बैठने के लिए सीट दी, मैं खिसक गया। अब वो तो भैया खिसका खिसका के मुझे ही गिरा दिया, तो मैं क्यों सहूं? मुझे सहना चाहिए क्या? मुझे क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पर? ठीक है, अब क्या करें ऐसे मौके पर? तो उसका तरीका है कम्युनिकेशन। भाई जी तुम भी बैठो, हम भी बैठे, दोनों मिलके बैठेंगे। तुम्हें थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए, मैं थोड़ी कम जगह ले लेता हूँ, ये तो सहना हो गया राइट, पर तुम ही बैठो। अच्छा ये भी तो हो सकता है, अगर हमारे घर का कोई होता, मेरा बेटा होता, मेरी बेटी होती, मेरी वाइफ होती, कोई भी होता, मेरे पेरेंट्स होते, तुम क्या कहते? नहीं तुम बैठो, मैं खड़ा हूं कहते हैं। तो उसको भी देख लें कि अगर वो मान लो मुझे हटा भी रहा है तो कोई कारण भी हो सकता है। एक कारण तो हो सकता है कि उसकी मनोवृत्ति वैसी है, हो सकता है, नो डाउट हो सकता है। एक हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम हो, है ना, कोई एक्सपेक्टिंग लेडी हो तो आप पूरी बर्थ ही दे दोगे, तुम सो जाओ मेरी बर्थ पे, मैं कैसे भी करके चढ़ जाऊंगा ऊपर वाली बर्थ पे, कहते हैं ना, कहते हैं ना। हाँ तो सर्कमस्टेंशियल दिक्कत आप देखेंगे, सहने की शक्ति और सामना करने की शक्ति आपस में ऑपोजिट है, डायगनली ऑपोजिट है, देख रहे हैं, दिख रहा है ना। तो डायगनली ऑपोजिट का मतलब है हमें व्यक्तियों के संबंध संपर्क में सहना है और वस्तुओं के सिचुएशंस के संबंध संपर्क में सामना करना है। ये फर्क है, हम लोग व्यक्तियों से सामना करते हैं और चीजों से समस्याओं को हम सहन करते हैं, यहां गलती कर देते हैं। और इसी को परखने की बात है, इस यही तो निर्णय लेना। तो एवरी पावर इज अ प्रिल्यूड टू द नेक्स्ट पावर एंड एवरी पावर हैज अ कॉन्ट्रोडक्टिंग या बैलेंसिंग ऑपोजिट पावर। ये जो है ना बहुत साइंटिफिक है, ये भगवान ने इतना खोल करके जो हमें पढ़ाया है। तो सामना भी करना है, सहन भी करना है, लेकिन परखना है और फिर निर्णय देना है कहां सामना करना है। एक बहन को फोन आया तो सामने वाला जरा गलत बातें कर रहा था, तो कहा भाई जी बहुत हो गया, अब रख दो फोन वरना अच्छा नहीं होगा। कहते अरे आप तो ओम शांति वाले हैं ना, ऐसे कैसे बात कर रहे हो? भाई जी शांति की जगह शांति अच्छी लगती है, शक्ति की जगह शक्ति अच्छी लगती है। ठीक है ना, यही तो निर्णय लेना है हमको। फिर नेक्स्ट है सहयोग करने की शक्ति। मजेदार बात यह है कि हमें सहयोग न लेना आता है न देना आता कैसे? जब सहयोग देते हैं तो एहसान करते हैं और जब सहयोग लेते हैं तो भीख मांगते हैं। मिन्नतें करते हैं, राइट। लेकिन अपने स्वमान में रह करके फिर सहयोग देना और लेना, एक एक उंगली, छोटी 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 वाली उंगली से गोवर्धन पर्वत उठ गया था सबके सहयोग से। भगवान कहते हैं तुम विश्व की फिक्र नहीं करो, स्व परिवर्तन कर लो, विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। हमारा मोटो ही यहाँ पर ये है, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन में। तुम देवता बन जाओ, मैं कलयुग का पहाड़ तुम्हारे सर से उठा दूंगा। बस इतना ही करना है हमको, खुद को देख लेना है, पर चिंतन पर वर्णन नहीं करना, स्वचिंतन आत्मचिंतन। हाँ, पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। और हम दिन रात दूसरों की ही बातें सोचते रहते हैं। हाँ, तो ये स्व परिवर्तन हो गई तब जब आत्मचिंतन और आत्म मंथन होगा। हाँ, भगवान ने कहा है कि तुम अपना फिकर कर लो, बाकियों की फिकर करने के लिए मैं बैठा हूं ना, मैं बैठा हूं ना, बैठा है कि नहीं बैठा। मेरे परिवार की चिंता मुझे करनी है, मेरा परिवार उसका परिवार है या नहीं है, है? और मेरा परिवार सक्षम है कि नहीं है, है कि नहीं है, है कि नहीं है, या तो कह दो कि नहीं नहीं वो सब अपाहिज है, हमारे बिना चल ही नहीं सकते। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें लगता है हमारे बिना नहीं चल सकता, हमारे बिना बहुत अच्छा चलता है, बहुत बहुत अच्छा चलता है, है? राइट? तो ठीक है, हमारे बिना अच्छा चल सकता है, थोड़ा सा स्पेस दे दें चलेगा। अब कहीं गड़बड़ होगा तो हम तो बैठे हैं ना। जब आप ड्राइविंग सिखाते हो अपने बच्चों को, कैसे सिखाते हो? तू चला, मैं हूं ना संभालने के लिए, ऐसे ही है ना। ऐसे हम भी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐसे भगवान ने कहा है, तू चल तो, तू बढ़ तो आगे, मैं संभालने के लिए पीछे भी खड़ा हूं, आगे भी खड़ा हूं, तुझे क्या दिक्कत है? हाँ, और फिर आसपास के एक घटना बताते हैं। सिएटल ओलंपिक्स में देवर 9 चिल्ड्रन स्टैंडिंग बिफोर द स्टार्टिंग लाइन ऑफ अ रेस, देवर ऑल रेसिंग एंड देवर ऑल आइदर फिजिकली चैलेंज्ड और मेंटली चैलेंज्ड। सो at the blow of the gun they started running, they didn't run actually, they were walking, matlab kyunki challenged hai na bacche, to usme se ek bachcha jo hai na wo thukar kar ke gir gaya, baith gaya, rone laga, jo baki bacche the wo ruke, piche mudkar dekha, fir wapas aaye, ek ladki uske sath mein baith gayi, choti si ladki wo baith gayi, wo down syndrome ki thi mareez, baith gayi, usko gale laga liya, kehte ab theek ho, ha theek hai, ठीक है। फिर सबने मिलकर के उसको उठाया, सारे के सारे एक दूसरे के गले में हाथ डालते हुए धीरे 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 फिनिशिंग लाइन तक पहुंच गए। हु वन द रेस? ऑल वन द रेस। लाइफ इज नॉट अ रेस, लाइफ तो जीना है ना, और हम भाग रहे हैं। एक दूसरे को साथ लेकर के आप अकेले घूमने जाओ, मजा आता है? मजा आता है? कितने क्वेरीज आती है, बहन जी हम अपने फैमिली को ले आए इस कॉन्फ्रेंस में, हम आज जोड़ते 300 की संख्या है, सॉरी डेलीगेट्स ही आएंगे। हाँ, लेकिन आप चाहते तो यही थे ना कि उन्हों का भी उद्धार हो, इसीलिए तो है ना। हाँ, कोई बात नहीं, वापस जाएंगे सेंटर पर। हाँ, उनको लेके जाइए, 7 दिन का कोर्स करिए, और मेहमान बन के क्यों आएंगे, भगवान के बच्चे, फुल बीके, अभी भी बीके हैं, और तब जो थोड़ी बहुत कमी है उसको भी पूरा करके फुल बीके बनकर आइए। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। फिर फुली छूट है, बीके को छूट मिल जाती है, पता है, अक्टूबर से लेके दिसंबर तक, उसमें फैमिली आ जाती है, अगर सारे फैमिली मेंबर्स डेली कुछ 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 प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ठीक है, हाँ, तो क्यों ना मिल करके जिए, मिल करके इस जीवन के सफर को तय करें, आनंद के साथ तय करें। ये है पावर टू कोऑपरेट। देवता माने ही क्या, देने वाला है ना। और फिर आखिरी है, पावर टू विड्रॉ कहें या विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति कहें। जैसे कछुआ, 2 स्थितियों में वो अपने अंगों को समेटता है। एक स्थिति तो तब जब खा पी लेता है, सारा काम हो गया, अब तो रेस्ट करना है, तो अंगों को समेट करके बैठ जाता है। दूसरा, जब वो देखता है कोई तूफान आ रहा है, कोई हिंसक पशु आ रहा है, कोई खतरा भांपता है, तब वो अपने अंगों को समेट करके बैठ जाता है। ठीक है, अब राजयोग में भगवान में ध्यान लगेगा कब? जब बाकी जगह से ध्यान हटा हुआ होगा, जब कर्म इंद्रियां मेरे वश में होंगी, भले मैं ऐसे बैठी हूं हाँ, लेकिन आंखें इधर उधर जा रही हैं, तो इधर उधर अटेंशन जा रहा है, तो भगवान में अटेंशन कैसे जाएगा? आंखें नहीं, किसी किसी की तो ये भी हिलता रहता है ना, कभी इसको देखेंगे कौन आया, फिर उसको देखेंगे उसने क्या किया, कौन बैठा कौन खड़ा हुआ, है ना, हाँ, तो भगवान में मन नहीं लग पा रहा है, है ना। लेकिन ये अभ्यास की बात है, शुरू शुरू में होगा कौन आया कौन गया, कोई बात नहीं है। जब अभ्यास कर लेंगे तो हम सोते जागते उठते बैठते, अरे भगवान से बातें तो करनी है, है? और उस समय ट्रैफिक जैम सबसे अच्छा समय होता है, उस समय वेटिंग लाइन में जब हम होते हैं, क्यू में होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं, वो बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि उसमें दिमाग का तो कोई काम करना ही नहीं है, उसमें क्या करो, भगवान को याद करो। अच्छी बात है ना, है, है? भगवान को याद करने के लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं है, रात को याद करे, दिन में याद करे, दोपहर में याद करे, नहाते नहाते याद करो, क्या मना है? क्या मना है? क्या मना है? नहीं ना, कभी भी याद करो ना, इतना ईजी बना दिया है भगवान ने, राजयोग कोई मुश्किल चीज नहीं है, हाँ, अंदर जाने की बात है। एक बार एक जापान में एक बहुत अच्छे मास्टर को, जेन मास्टर को बुलाया कि हमारे लोगों को आप थोड़ा सा कंसंट्रेशन की, जेन मास्टर्स में ना कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, हाँ, तो उसको आप सिखाइए। तो पूरी बिल्डिंग के लोगों को बुलाया और वो सिखा रहे थे। अब जापान बीच में ही जो है बहुत तेज भूकंप आया, सब लोग भाग गए, हाँ, नीचे जाएंगे तो जान बचेगी, बिल्डिंग से नीचे भी तो उतरना पड़ता है ना। अब जब आ गए सब लोग, इकट्ठा हो गए, थोड़ी देर के बाद ही विद इन अ मिनट वो भूकंप शांत हुआ। तब जिसने इनवाइट किया था जेन मास्टर को, उसको ध्यान आया मैं उनको तो लेके भागा ही नहीं, वो कहाँ है, देखा वो तो कहीं है ही नहीं, वो वापस भागा, क्योंकि चलो तब तक तो सब साइड हो गया था, अर्थ की कोई बड़ी बात नहीं थी। कहते हैं आप यहीं बैठे रहे, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, हम तो सब लोग भाग गए थे। कहते नहीं, मैं भी भागा था। फिर तुम बाहर भागे थे, मैं अंदर भागा था, ये फर्क है, हा? तो अंदर भागना सिखा रहा है हमको राजयोग, कुछ असर नहीं होगा मुझ आत्मा पे। हो क्या सकता है असर, किसी का असर हो सकता है बाहर की चीज का? कोई मुझे मार सकता है, कोई मुझे काट सकता है, कर सकता है, हाँ, कुछ नहीं कर सकता। जब मैं भगवान की सम्माननीय औलाद हूं तो कोई मेरा अपमान भी नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है ना। तो बस थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्शन जब डेवलप हो जाएगा, अभी बात करने के लिए सोचना पड़ता है ना, ये बात करने की, जब खुद के बारे में चिंतन और परमात्मा के बारे में चिंतन, बस यही राजयोग है, है ना। मेरा बाप कैसा है, अरे नशा चढ़ेगा, वाह क्या बात है, मेरा बाप ऐसा है और मैं भी तो ऐसा हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, क्यों? क्योंकि सुंदरम की संतान हूं, है ना, तो मैं सुंदरम हूं, मैं सत्यम हूं, मैं शिवम की औलाद हूं, क्या बात है, वाह भाई वाह, हाँ। वो नशा चढ़ेगा, वो आनंद आएगा, और जितना आनंद आएगा उतना इंट्रोस्पेक्शन में भी मजा आएगा, है ना। ये तो दो तरफा चीज है, जितना सोचेंगे उतना पाएंगे, जितना पाते जाएंगे उतना सोचते जाएंगे। तो अपनी प्राप्तियों का चिंतन करें ना, अप्राप्तियों का चिंतन तो सारी दुनिया कर ही रही है, इसीलिए तो असंतुष्ट है। और प्राप्तियों का अगर हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड डेवलप हो जाए तो कोई असंतुष्ट रह ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। एक के सारने से 98.8% लाने से क्या दुनिया रुकती है या जिंदगी रुकती है? लेकिन छोटे छोटे बच्चे, क्लास 5 का बच्चा सुसाइड करना आया कहां से? सुसाइड शब्द क्या होता है? हाँ, फांसी किसने लगाना सिखाया? हमें तो गांठ भी नहीं बनती, वो फांसी लगा लिया, हाँ, फेलियर है, फेलियर जैसी तो कोई चीज ही नहीं है दुनिया में, सक्सेस ही तो है। और एब्सेंस ऑफ सेंस ऑफ एब्सेंस, माना जो सेंस नहीं कर रहा है सक्सेस को, वही तो फेलियर है, बाकी तो हर चीज में सक्सेस ही है, फेलियर है कहाँ? गिरे हैं तो उठना चाहें, जितनी बार उठेंगे तो पता चल गया ना, 1000 बार पता चल गया कि भैया ये बल्ब इस तरह से नहीं बनेगा। 1001वीं बार में पता चला कि बल्ब ऐसे बनेगा, तो वो फेलियर था या वो सक्सेस थी, है ना? नॉलेज गेन हो गई ना बस। तो ये हमारी पावर्स, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति, और विस्तार को संकीर्ण करने की, डिटैच होने की, विड्रॉ करने की शक्ति। जब हम लिप्त हो जाते हैं ना, हम ड्रामा देखते हैं कितने खुश होते हैं, है ना? और अगर हमने किसी भी कैरेक्टर के साथ आइडेंटिफाई कर लिया तो माताओं की चूड़ियां बजनी शुरू हो जाती हैं आंसू पोछते पोछते। बोलते कोई लेना देना नहीं, मान लो मैं फेक है, कुछ हुआ ही नहीं ऐसा, फिर भी है ना, डिटैच होंगे। शिव बाबा ना मुरली में हमको एक बहुत अच्छी चीज कहते हैं, क्या है ये मिकी माउस का खेल है। मिकी माउस का खेल देख करके हंसते हैं या रोते हैं? खेल चल रहा है ना, ये दुनिया क्या है, खेल ही तो चल रहा है ना। डिटैच होकर के देखेंगे। अब जैसे आपको एक सिचुएशन बताती हूँ, एक फादर अपने घायल बच्चे को दौड़ता हुआ लेकर के आया हॉस्पिटल में, कि डॉक्टर्स ने कहा इसकी तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है, उन्होंने ऑपरेशन थिएटर जो है तैयार किया, सारे सभा सर्जन को बुलाया। सर्जन जैसे ही आया और उसने बच्चे को देखा तो उसने कहा मैं ऑपरेट नहीं करूं। क्यों? Why did the surgeon say I will not operate? Because that surgeon was the mother of the child. हमारा अब देखो इसमें कौन कौन सी शक्तियां लगी हमारी। हमारी बुद्धि ने तुरंत परख के कहा कि सर्जन तो जनरली मेल होते हैं ना, राइट? फिर हमने किस किस तरह की चीजें, अनुमान, अनुमान, राइट? अनुमान बहुत बड़ा विकार है, बहुत बड़ा विकार है। फिर हमने क्या सोचा कि नहीं उसको पैसे कम मिले होंगे, वो थका हुआ होगा, उसको इंस्ट्रूमेंट ठीक नहीं लगे होंगे, उसे लगा होगा ये होपलेस केस है, क्यों ही ऑपरेट करना। कितनी बातें सोच ली, राइट? है ना? लेकिन वो सर्जन भी ऑपरेट कर सकता था कि अगर वो डिटैच होकर के करता। माँ को तो बचाना है ना अपने बच्चे को, अगर वो अटैचमेंट से सोचेगी तो शी कैन नॉट ऑपरेट। अगर उसे लाइफ सेविंग करनी है तो शी विल एनी हाउ ऑपरेट, राइट? राइट हाँ। तो ये शक्तियां हमारी, भगवान ने कुछ नहीं किया, केवल हमारी दृष्टि के कोण को बदल दिया है। जब आप रेलवे स्टेशन पर होते हैं ना, तो जब ट्रेन मूव करना शुरू करती है तो जो पटरियां होती है ना, वो इतना इतना बस कुछ यूं जा रहा है, कुछ यूं जा रहा है, इतना इतना डिफरेंस होता है, वेरी माइन्यूट डिफरेंसेस, राइट? लेकिन जब उस पटरी पर दौड़ पड़ती है तो कितने किलोमीटर्स अपार्ट निकल जाती है अगर वो गलत ट्रैक पर चली जाए, राइट? राइट। भगवान ने कुछ नहीं किया है, द एंगल ऑफ माय ओपिनियन, द एंगल ऑफ माय साइट, उसने वही चेंज किया है। शरीर के भान से मुझे आत्मा के भान में ले आया है, बस इतना सा किया है। उससे क्या हुआ, एंगल परसेप्शन का जब चेंज हो गया तो थिंकिंग का चेंज हो गया, तो एटीट्यूड का चेंज हो गया, तो निर्णयों का चेंज हो गया, तो एक्शंस का चेंज हो गया, तो संस्कार चेंज हो गए, तो भाग्य बदल गया, संसार बदल गया। उसने और कुछ नहीं किया, बस इतना ही सही किया है। और बार बार हमें जो कहते हैं ना, पॉज पॉज पॉज, ट्रैफिक कंट्रोल, ये वो, बहुत सारी चीजें हमने सुनी इतने सारे में, हमें बस क्रक्स यही देखना है कि जब हम एक सेकंड रुकते हैं तो हम ये देख लें कि ये मैं आत्मा बन के सोच रहा हूँ, देख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, या शरीर के भान में। शरीर के भान तो बहुत सारे, वो तो सब आप लोगों ने पहले ही जान लिया, चाहे वो रोल का हो या पढ़ाई का हो, चाहे वो आपके ऑक्यूपेशन का हो, धर्म का हो, जाति का हो, नेशन का हो, कुछ भी हो, है ना? बस इतना सा देखना है, उतने से बहुत क्लैरिटी मन में आ जाती है, राइट? तो अभी राजयोगा मेडिटेशन सच में भगवान का वो उपहार है, सौगात है, जो हमें आनंद की ओर लेकर के खुशी आती जाती है। खुशी भी तो अपने आप में ताकत है ना, है कि नहीं है? मैं खुश हूं, मस्त राम मस्ती में, ठीक, ओके। तो पावर्स कैसे आती हैं? जब हम याद करते हैं कि हम ऑलरेडी पावरफुल, हम तो हैं ही शक्ति स्वरूप आत्मा। बनना है क्या आपको? शक्ति स्वरूप बनना है या आप हैं शक्ति स्वरूप? क्या कहेंगे? हम हैं शक्ति स्वरूप। और भगवान ने तो एक और स्वमान दे दिया कि हम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान है। वो सर्वशक्तिवान है, हम मास्टर सर्वशक्ति, वो ऑलमाइटी है, मास्टर ऑलमाइटी है, वो ओमनीपोटेंट है, हम मास्टर ओमनीपोटेंट है, राइट। और पावर्स स्टे करती है जब हम समझते हैं वो बैठा है ना चिंता करने के लिए, राइट, है ना, बस दैट्स ऑल। तो मैं आत्मा हूं, मैं शांत हूं, मैं शक्ति हूं, मैं ही खुशी हूं, इन्हीं से बनी हुई हूं, है ना। यही है पावर्स जो भगवान हमें दे रहा है, पावरफुल बना रहा है। ओम शांति। इन दिनों में हमने जो कुछ भी नया जाना है, समझा है, बहुत कुछ ऐसा था जो हमारी मान्यताओं के विपरीत रहा होगा, कुछ अलग रहा होगा, एकदम से बिलीव करना मुश्किल हो रहा होगा, कुछ डाउट्स मन में आ रहे होंगे। हम आपसे बस इतना ही आग्रह करेंगे, ये सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। यहाँ थोड़ी समय की सीमा ज्यादा है, आप अपने सेंटर्स पे जरूर संपर्क कीजिए। 7 दिन का जो विधिवत कोर्स होता है, विधि से सिद्धि मिलती है, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, आपको आनंद जरूर आएगा। 24 घंटे हमने अपने लिए, अपने देह के लिए, देह की वस्तुओं के लिए, देह के संबंध के लिए दिए हैं, राइट, 365 दिन। 1 घंटा हम अपने लिए, या क्या कहूं, भगवान के नाम पे, अल्लाह के नाम पे दे दो, यही कह सकते हैं, 1 घंटा। हाँ, बस इतना सा करना है। अगर वो भी मुश्किल है तो सैटरडे संडे, 7 सैटरडे संडे, 7 संडे, कैसे भी करके एक बार समझ लीजिए। और उसके बाद ना समझ में आए तो नोबडी कैन फोर्स एनीबडी, नहीं कर सकता ना। और आप लोग तो इंटेलिजेंशिया क्लास है, आपको कोई बर्गला तो बिल्कुल ही नहीं सकता, राइट, है ना, धोखा भी नहीं दे सकता, फोर्स तो कोई वैसे ही नहीं कर सकता। फिर चॉइस हर एक की अपनी है, है ना। भगवान जो सबसे बड़ी चीज है ना, वो ऑनर करता है हमारी चॉइस को, तुम्हारी चॉइस है, तुम जैसे चाहो, तुम जैसे जीना चाहो, तुम करो वैसे। हाँ, तो मुझे देखना है, मुझे क्या करना है, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन हाँ, ये रिक्वेस्ट हम आपसे कर सकते हैं कि एक बार इस सत्य को पूरी तरह जान लीजिए, मोटे तौर पर तो कम से कम जान लीजिए, और थोड़ा थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देख लीजिए। अनुभव से बड़ी तो कोई अथॉरिटी होती नहीं, जिसको अनुभव हो गया ना उसके आगे कह दे नहीं ऐसे नहीं होता, अरे मुझे पता है, मैंने देखा है, मुझे मालूम है, ऐसे ही कहते हैं ना उसको। एक बार थोड़ा सा अनुभव कर लीजिए, फिर आप जैसे चलना चाहें, वैसे तो हर एक का जीवन उसके हाथ में है ही है। थैंक यू, ओम शांति।